नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिन की यात्रा पर कुवैत पहुंचे। उन्होंने कहा, कुवैत के साथ भारत के संबंध ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण। गृहमंत्री अमित शाह त्रिपुरा के अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद की 72वीं पूर्ण बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी परिषद की बैठक जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। जयपुर गैस टैंकर दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 14 हुई। भारत ने देश में विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार करने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 35 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तनाव और हिंसा की वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए आज पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया जा रहा है। और मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भीषण शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की यात्रा पर कुवैत पहुंच गए हैं। उनके यात्रा कुवैत के अमीर शेख मैशल अल अहमद अल जाबिर अल सभा के निमंत्रण पर हो रही है। एक रिपोर्ट।
यह यात्रा 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के क्राउन प्रिंस से मुलाकात करने के साथ साथ अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। अपने प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और कुवैत के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश न केवल मजबूत व्यापार और ऊर्जा साझेदार हैं, बल्कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि में भी साझा रुचि रखते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए, भविष्य की साझेदारी के लिए रोडमैप तैयार करने का एक अवसर होगा। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह यात्रा भारत और कुवैत के लोगों के बीच विशेष संबंधों और मैत्री के बंधन को और मजबूत करेगी। रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वे कुवैत में भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने की भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनकी दोनों देशों के बीच के संबंधों को प्रगाढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाड़ी क्षेत्र की प्रमुख खेल प्रतियोगिता अरेबियन गल्फ कप के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करने पर कुवैत सरकार के प्रति आभार प्रकट किया। श्री मोदी ने कहा कि उनकी इस यात्रा से भारत और कुवैत के मैत्रीपूर्ण संबंध और मजबूत होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर को विश्व का केंद्र बिंदु बना दिया है। अगरतला में आज पूर्वोत्तर परिषद के 72वें पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष पूर्वोत्तर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार निवेशकों को पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
81,000 करोड़ रूपये की योजनाएं अब तक बन चुकी है। रोड कनेक्टिविटी में 41,000 की योजनाएं बन चुकी हैं, हवाई अड्डे के 64 रूट नए चालू हुए हैं और अब बाकी जो बचा है काम भी द्रुत गति से 3 साल में समाप्त करने का काम हमने लक्ष्य रखा है।
श्री शाह ने कहा कि पहले केवल पूर्वोत्तर की बात होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र के विकास को महत्व देने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में पूर्वोत्तर के सभी राज्य समृद्ध बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का उद्देश्य पूर्वोत्तर को बाकी देश के बराबर लाना है। श्री अमित शाह ने कहा कि इस क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियों में 71% की गिरावट आई है और मानव जीवन की क्षति में 60% कमी आई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 80 दौरे किए हैं और प्रधानमंत्री रिकॉर्ड 64 बार पूर्वोत्तर गए हैं। जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक राजस्थान के जैसलमेर में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में गोवा, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, मेघालय और ओडिशा के मुख्यमंत्री तथा अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी बैठक में शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
जीएसटी काउंसिल की यह बैठक शाम तक चलेगी। बैठक समाप्त होने के बाद वित्त मंत्री परिषद द्वारा किए गए निर्णयों के बारे में मीडिया को जानकारी देंगी। जीएसटी परिषद की इस बैठक में कुछ वस्तुओं के टैक्स स्लैब में बदलाव किए जाने की उम्मीद है। बैठक में खाद्य वितरण सेवाओं, जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दरों को कम कर आम नागरिकों को राहत देने का निर्णय किया जा सकता है। कुछ लग्जरी वस्तुओं पर जीएसटी की दरों को बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जा सकती है। साथ ही बैठक में जीएसटी की ऑनलाइन सेवाओं को और बेहतर बनाने के संबंध में भी मंथन किए जाने की उम्मीद है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने 35 करोड़ डॉलर के नीतिगत ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये ऋण मल्टी मॉडल और इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मजबूत करने के दूसरे कार्यक्रम का हिस्सा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार देश के लॉजिस्टिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार कर रही है। इस ऋण समझौते पर आर्थिक कार्य विभाग, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग तथा एशियाई विकास बैंक ने हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बयान में कहा है कि भारत की लॉजिस्टिक क्षेत्र का विकास विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जयपुर गैस टैंकर दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 14 हो गई है। 27 घायलों का एसएमएस अस्पताल में इलाज हो रहा है। घायलों में से कुछ की हालत गंभीर है, 6 घायल वेंटिलेटर पर हैं। जयपुर के जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने दुर्घटना की जांच के लिए संयुक्त जांच समिति गठित की है। टैंकर दुर्घटना कल सुबह जयपुर अजमेर हाईवे पर भांगरोटा इलाके में हुई, जब एलपीजी टैंकर में विस्फोट से 40 वाहन जल गए। हाईवे किनारे स्थित एक पाइप फैक्ट्री भी जलकर नष्ट हो गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में वन रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया। उत्तराखंड के देहरादून में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया। ये रिपोर्ट हर दो साल में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित की जाती है और देश के वन और वृक्ष संसाधनों का आकलन प्रस्तुत करती है। एक रिपोर्ट।
रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 25% है। इसमें पिछले आंकलन की तुलना में 1,485 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान जैसे राज्य सबसे आगे रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे बड़ा वन और वृक्ष आवरण मौजूद है। रिपोर्ट में देश के कार्बन स्टॉक का भी उल्लेख किया गया है, जो 7,285.5 मिलियन टन है, जो पिछले आंकलन से लगभग 81 मिलियन टन अधिक है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का अंतिम संस्कार आज दोपहर 3 बजे किया जाएगा। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी के साथ वहां मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। गुजरात में कच्छ के रेगिस्तान में आयोजित वार्षिक रण उत्सव में बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से इस उत्सव में शामिल होने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कहा कि रण उत्सव पर्यटकों को कच्छ की शानदार संस्कृति और गर्मजोशी भरे आतिथ्य को देखने का अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करेगा और प्राचीन रण की खोज करने का अवसर प्रदान करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि नवंबर में शुरू हुआ यह उत्सव अगले वर्ष 15 मार्च तक चलेगा।
गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धोरडो में 3 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया प्रसिद्ध रणोत्सव अब वैश्विक कार्यक्रम बन गया है। यह उत्सव पर्यटकों को कच्छ के भूंगा नाम के विशिष्ट घरों में रहने का, ऊंट सवारी, स्थानिक संस्कृति, सितारों को निहारने और सफेद रेगिस्तान की अनूठी प्राकृतिक सुंदरता का यादगार अनुभव प्रदान करता है। राज्य सरकार द्वारा कच्छ में एक रेगिस्तान पर्यटन सर्किट विकसाया जा रहा है, ताकि पर्यटक सीधी बस द्वारा धोलावीरा, काला डूंगर और प्रसिद्ध मांडवी बीच और कच्छ के अन्य पर्यटन स्थलों की यात्रा कर सके। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज पहला विश्व ध्यान दिवस है। इस दिवस का आयोजन शांति और कल्याण की भावना से जीवन जीने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है।
कहा जाता है कि तनाव, हिंसा और सामाजिक असंतोष सहित कई वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सकने की क्षमता ध्यान में है। योग विशेषज्ञ और थेरेपिस्ट डॉक्टर नीलम जोशी कांडपाल ने बताया कि ध्यान लगाने से हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
ध्यान को हम कह सकते हैं कि ये हमारे मन को डिटॉक्स करता है और मन के डिटॉक्स होने से शरीर खुद ब खुद डिटॉक्स हो जाता है। डिजीज हमारी साइकोसोमेटिक होती है जो कि मन से शरीर पे आती है। मन को एकाग्र करना बहुत जरूरी है, तो ध्यान इसका अच्छा माध्यम है जिससे कि हमारे जो रोज की समस्याएं हैं जैसे कि नींद का ना आना है, हाइपरटेंशन, ये सब बीमारियों से खुद ब खुद निजात मिल जाता है।
संयुक्त महासभा ने हाल ही में इस संबंध में भारत द्वारा सह प्रायोजित प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया था। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान को सदियों से अभ्यास में लाया जाता रहा है। समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ध्यान को अपनाने और दैनिक जीवन का अंग बनाने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ध्यान व्यक्ति और समाज के जीवन में शांति और समरसता लाने का सशक्त माध्यम है। श्री मोदी ने कहा कि तकनीक के मौजूदा दौर में ऐप और वीडियो ध्यान को अपनाने में सहायक हो सकते हैं। आज दुनिया भर में भारतीय दूतावासों ने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान दिवस का आयोजन किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप परिषद में वैश्विक शांति और सौहार्द के लिए ध्यान कार्यक्रम का आयोजन किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि भारत में प्राचीन काल से ही ध्यान की परंपरा रही है और ये आंतरिक शांति तथा समरसता का माध्यम है।
India's leadership in overall human well-being stems from our civilizational dictum of Vasudhaiva Kutumbakam, or the whole world is one family. The UN General Assembly also acknowledged the close link between yoga and meditation as complementary approaches to health and well-being.
लाओस में भारतीय दूतावास में भारत के राजदूत प्रशांत अग्रवाल ने शांति, समरसता और व्यक्तिगत कल्याण के लिए ध्यान अपनाने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र में नेपाल के दूतावास में भी विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। साओ पोलो में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में ध्यान सत्र का आयोजन किया। दक्षिण अफ्रीका में जोहानिसबर्ग में भारतीय दूतावास ने सभी से सचेतन होकर जीने की अपील की। हांगकांग में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने ध्यान से आंतरिक शांति को प्राप्त करने और समरसता के प्रसार का आह्वान किया। श्रीलंका और भूटान में भारतीय दूतावासों में भी विश्व ध्यान दिवस का आयोजन किया गया। अर्जेंटीना में भारतीय दूतावास ने योग, पाक कला और भारतीय संस्कृति के मिश्रण के साथ विश्व ध्यान दिवस मनाने की घोषणा की। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि भारत ने मलेरिया के मामलों और उससे जुड़ी मृत्यु दर कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। स्वास्थ्य संगठन की वर्ष 2024 की विश्व मलेरिया रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि ब्रिटेन के संसद परिसर में इस सप्ताह हुई बैठक में नए सभी हितधारकों ने रिपोर्ट के निष्कर्षों पर विचार विमर्श किया। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के दौरान जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में शीतलहर बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब और राजस्थान में भी सोमवार तक यही स्थिति बनी रहेगी। जम्मू कश्मीर में 40 दिन की सर्दी का दौर चिल्लई कला शुरू हो गया है। कल रात कश्मीर घाटी के लगभग सभी इलाकों में भीषण ठंड रही। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर के कारण निचले इलाकों में धुंध और कोहरा छाया हुआ है। राज्य में शुष्क मौसम जारी है। घने कोहरे के कारण पिछले 3 दिन से कुल्लू के भीतर भुंतर हवाई अड्डे से उड़ानें संचालित नहीं हो पा रही हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में बना हुआ है। आज दोपहर 1 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 379 था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन की यात्रा पर कुवैत पहुंचे। उन्होंने कहा कुवैत के साथ भारत के संबंध ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण। गृहमंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद की 72वीं पूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। राजस्थान के जैसलमेर में GST परिषद की बैठक जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। जयपुर गैस टैंकर दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 14 हुई। भारत ने देश में विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार करने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $35 करोड़ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तनाव और हिंसा की वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए आज पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।